लोगों को खास तौर से बात कहो कि शाद्वात यहां एक नारियल रखा है, एक सेब, उसके बगल में नींबू। आप बताइए ये नींबू छोटा है, सेब उससे बड़ा है, नारियल उससे बड़ा है। सेब कैसे है, छोटा भी है और बड़ा भी है, सब छोटा बड़ा कैसे? नींबू की अपेक्षा से सेब बड़ा है, नारियल की अपेक्षा से छोटा। किसी स्त्री के पास तीन बच्चे थे, कहां रहोगे? बोले इस कक्ष में रहूंगा। मुझे क्या करना है? बोले कुछ नहीं, कपड़े और खाना और पानी देना। अंदर बंद हो गया, एक महीने के बाद बाहर निकल गया। पत्नी ने पूछा क्या किया तुमने? अंदर चुप बैठ के बोले चिंतन किया। क्या लाभ हुआ उस चिंतन से? वेस्ट में तुमने अपने कमरे में बंद रहकर समय नष्ट कर दिया। बोले नहीं, कार में बैठो। पत्नी कार में बैठी, एक नदी किनारे गए और कार से उतर गए। पत्नी से पूछा हम किस किनारे खड़े हैं? बोले इस किनारे खड़े हैं। अच्छा, नाव में बैठ गया, नाव में बिठाया, दोनों उस किनारे गए, नीचे उतार दिया, खड़े हो गए। पत्नी से पूछा हम किस किनारे खड़े हैं? बोले इस किनारे खड़े हैं। इधर भी कह रही थी इस किनारे खड़े, अब भी कह रहे इस किनारे खड़े, हम किस किनारे खड़े हैं? पत्नी ने कहा उसके अपेक्षा से हम इस किनारे और इसके अपेक्षा से इस किनारे। बोले यही तो खोज करने के लिए मैंने मौन रखा था। सापेक्षवाद, आपने कहा स्व को जानो, स्व तब कह सकते जब परनाम की कोई चीज है। सत्य तब कह सकते जब असत्य नाम की चीज को आप ठीक ठीक जान सके। रक्त तब कह सकते जब कांच नाम की चीज सामने हो। रोशनी तब कह सकते जब अंधेरे नाम की चीज को जानोगे। हमारे साधवान क्या बात बताओ, प्रमेय को ज्ञान का विषय मानता है। बहुत मेरे ये बाय पॉइंट संसार के कोई दार्शनिक इसको नहीं मानते जिसको मैं बता रहा हूं। पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं मानते हैं हम, और सारे दुनिया के लोग पदार्थ के ज्ञान का कारण मानते हैं। जब इसकी चर्चा आचार्यों ने की है और दार्शनिकों ने की है, बोले पदार्थ ज्ञान का कारण है, तो आचार्य ने कहा पदार्थ ज्ञान का कारण होगा तो अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, रोशनी में दिखाई देगा पर अंधेरे में उल्लू को भी दिखाई देता है। जब दार्शनिकों ने कहा पदार्थ ज्ञान का कारण है, तो जैन आचार्य ने कहा कि पदार्थ ज्ञान का विषय कारण नहीं है। बोले क्यों? कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। जब और दार्शनिकों ने कहा अंधेरे में कुछ भी तो नहीं दिखाई दे रहा है, जैन आचार्य ने कहा आप झूठ मत बोलो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कहना ये झूठ है। बोले अंधेरा तो दिखाई दे रहा है, अंधेरा तो दिखाई दे रहा है, आप ऐसे कैसे एकांत मिथ्या बात करके कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? मान भाव पदार्थ ज्ञान का विषय है पर ज्ञान का कारण नहीं। इसके लिए हमें द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को जानना होगा। क्या है द्रव्य क्षेत्र काल भाव? किसी के घर में एक घड़ी की चोरी होगी, उसने पुलिस स्टेशन में केस कर दिया, लिखवा दी साहब मेरी घड़ी की चोरी होगी। जब पुलिस लिखवाने लगे तब उनसे पूछा द्रव्य मेरी घड़ी की, क्षेत्र जगह मेरे अमुक मोहल्ले में अमुक घर पर। जब पुलिस लिखवाने लगे तब उनसे पूछा द्रव्य मेरी घड़ी की, क्षेत्र जगह मेरे अमुक मोहल्ले में अमुक घर पर। कार कितने बजे चली गई? पुलिस आप अंदाजे 3 बजे। तब खोज करती और उसको पकड़ती, कौन आए कौन गए? बोले अमुक अमुक आए, पकड़ लिया उसको घड़ी से ही, जज के पास लिए बिठाया। जज ने उसकी स्टडी की, द्रव्य बोले घड़ी की चोरी हुई, क्षेत्र अमुक मोहल्ले के घर में, काल बोले दोपहर में 3 बजे। अब चोरी करने वाले के भाव जज परीक्षा करेगा, नुकसान पहुंचाने की भावना थी या उसने अपने किसी मजबूरी से चोरी कर दी, क्या पहले भी ये चोरी कर चुका है, इन सब को जांच पड़ताल करेगी और इंडियन पिनल कोड के अनुसार जजमेंट देगा। बोले इसने प्रथम बार चोरी की है बोले वो जज अपने पर लेगा, वार्निंग देकर उसको छोड़ देगा। बोले इसके बाप बुरे नहीं थे, सब जमीन चोरी कर दिया। जब पहले और बहुत बार चोरी कर चुका हो और अपराध भोग चुका हो तो उसको दुगना सजा देगा। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक पदार्थ के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से निर्णय विचार और चिंतन करने के लिए साधवाद हमें सलाह देता है, मजबूर करता है। तो महानुभाव साधवाद सिद्धांत, क्या जीव और मनुष्य नित्य है? बोले हां नित्य है। अनित्य है? बोले अनित्य भी है। नित्यानित्य? बोले नित्यानित्य भी है। कैसे बताओ आपने? आप है यहां, आपको बालक कहते थे, बालक सबसे पुकारते थे। कोई आज आपको बालक कह दे गुस्सा आ जाए। आज नौजवान कहा जा रहा है और नौजवान की स्थिति में आप बैठे हुए हो तो चिंतन करो, मेरा भविष्य बुढ़ापा है और जो भूत था वो बालकपना था और वर्तमान में मैं जवान हूं। आप बालक भी थे, बूढ़े भी होंगे और वर्तमान में नौजवान भी। तीन बातें, एक एक पदार्थ को त्रिधा भवती वीक्षिता, एक ही पदार्थ को तीन तरीके से समस्त संसार के पदार्थ को देखा जाए, देखना पड़ेगा। बताइए आप, बालकपन, वृद्धापन और वर्तमान पर्याय, मान भाव, तीन पर्याय को हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, भले वो अंशिक रूप से, इससे त्रिकालज्ञ है हम लोग भी त्रिकालज्ञ है। कल हमने ये किया हमें याद हो जाएगी और वर्तमान में हम ये कर रहे हैं और कल ये करेंगे। आप तीन काल की जांच बैठा होगी साधवाद, ये अनेकांत का पुंज है। हमारे सुप्रीम जजमेंट सम्मति सूत्र के आचार्य ने बहुत सुंदर कहा है, भद्दम निच्छादंशन समूह महेश अमय सार जिन वयनस्त भगवो संदिग्ध सुहाई गंदस। जो विकराल भगवान का वचन है, अनंत धर्म अनंत धर्मात्मक पदार्थ को और सप्त भंडों में वह कथन करता है, प्रतिपादन करता है, समझाता है। तो इसलिए आप याद रखिए कि आज आपके बाल काले हैं तो कल सफेद हो जाएंगे, वो काले बाल में से सफेद कहां से आए? अब तक नहीं थे और अब सफेद कहां से आए? काले में सफेद तो छुपा हुआ था पर अव्यक्त था, हरे मेहंदी में ही लाल रंग छुपा हुआ था, पीसते ही हाथ लगाते लाल प्रकट हो गया, हरा आम पीला हो गया, खट्टा आम मीठा हो गया, कैसे हो गया? मान भाव, प्रत्येक पदार्थ में अनंता अनंत गुणधर्म है, उसको व्यक्त करने की जो विधि है वह आदमी जो जानता है, उनका मैंने खोज की, उसने इतनी सी खोज की, इसमें शक्ति थी, इससे अधिक उसने कोई उसमें अपना कोई शक्ति नहीं डाला, अपने कोई चमत्कार नहीं डाला, न परमात्मा ने किसी पदार्थ में हस्तक्षेप किया, स्वयं अनंत धर्मात्मक शक्ति प्रत्येक पदार्थ में मौजूद है। उसको जानने की जो विधि है आपने प्रकट कर ली, आपने जाना, आपने देखा। तो इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा, भनकन कंचन राजसुत, भनकन कंचन राजसुत, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। जो सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, वह तो प्रकट हो जाने के बाद आपको आनंद होता है। यथार्थ ज्ञान कराने की जो श्रेय किसी को है वह साधवाद है, और साधवाद के बिना एक क्षण भर के लिए भी आप चल नहीं सकते। आप घर गए किसी के, बोले वकील साहब है, बोले वकील साहब नहीं, घर से आवाज आई वकील साहब नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे पृथ्वी मंडल में नहीं है, घर में नहीं तो कोर्ट में, वकील साहब सर्वथा नहीं है, चले है पर घर पर नहीं है, अभी कोर्ट में, कोर्ट में नहीं है, घर पर है। तो महानुभाव, ये साधवाद सिद्धांत हमारे अंदर पुरुष और स्त्री के आत्मा में कोई फर्क नहीं, वो भी आत्मा आत्मा है, ये भी आत्मा आत्मा है, चलिए आपको बता रहा हूं बहुत सूक्ष्म से सुनना। कुंभ देव ने समय सार के सर विशुद्धाधिकार में कह दिया क्या, आपका आत्मा और साधु का आत्मा भेद नहीं। बोले क्यों, आत्मा न श्रावक है न आत्मा साधु है, आत्मा आत्मा है परमात्मा। आत्मा जो गृहस्थ कहा जा रहा है, श्रावक कहा जा रहा है, वो अपेक्षा के लिए कह रहा है, शरीर के पर्याय को लेकर कहा जा रहा है। ये साधु बन गए लेकिन साधु का आत्मा, स्त्री है तो स्त्री का आत्मा, बालक है तो बालक का आत्मा। इसलिए ये आत्मा जो है आत्मा ही है और वो परमात्मा है, वो किसी आत्मा को छोटा बड़ा नहीं मानता। और जो कोई कहेगा उसके सत्य स्वीकार करने के लिए सलाह देता। एक बार की बात है, कबीर नाम जानते हैं और उसका लड़का कमाल दोनों जा रहे थे यात्रा करते कहीं। कमाल लड़का 8 साल का था और कबीर बहुत बड़ा उम्र वाला था, धीरे चल रहा था, फिर भी बच्चा कहीं हाथ धोते की देर लगाए तो ये थोड़ी जल्दी आ जाएगा करके चलने लगा। कबीर चलते 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 रास्ते में एक सोने का घेरा पड़ा था, देखकर उसको हुआ कि कहीं मेरा लड़का उठा के चोरी नहीं कर दे, क्या कर, इसलिए उस पर मट्टी धका दिया। कमाल ने देखा कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, आगे चले तो लड़का वहां खड़ा हो गया, पिताजी इधर आ जाओ, पीछे देख रहे थे कि मेरा लड़का कहीं उठा नहीं ले,
वहां क्या किया आपने,
बेटा कुछ नहीं, पैर को थोड़ा खादसा हो गया, मैं यूं यूं करके रहा, तो उसने हटा दिया मिट्टी को, सोना का घना था, पिताजी इधर आओ। बोले क्या, इस पर मट्टी क्यों डाला, बोले बेटा कहीं चोरी नहीं कर ले तू, इसलिए मैंने इस पर ढका दिया। बोले आप साधु हैं, बोले हाँ साधु, अभी आपके मन में सोना और मिट्टी के अंदर मन में भेद है, तुम कैसे साधु, पहले तो झूठ बोले मेरे से और दूसरी बात आपने ये कर दिया, सोने और मिट्टी के अंदर अभी भी आपके ये कीमती है और ये कीमती नहीं है, ये सामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले में आपने कोई फर्क नहीं, आपने घर छोड़ दिया, नाम बदल लिया, परंतु आपके अंतरंग को ही बदला नहीं, इसलिए मैं अंतरंग साधु हूं ना, आपको साधु नहीं मानता, अंतरंग से आप त्यागी भेद ना, मैं आपको साधु नहीं मानता हूं। तब कबीर ने कमाल से कहा, बाल होते सिख लीजिए विचित कहत जो हो, रवि का जहां प्रकाश लो दीप प्रकाश करो। पांड भाव उन्हें कहा, सूरज नहीं है तो अंधेरे में दीपक के सहारे से और अपना काम करते हैं, इसी प्रकार से यदि सत्य बालक भी कहता है तो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह हमें शाद्वाद सलाह, शाद्वाद कहता है सत्य आप खरीद नहीं सकते हैं, सत्य सबके आत्मा में मौजूद है, तीन लोक के अंदर सत्य को छोड़कर कुछ नहीं है, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम, जो सुंदर है वह सत्य नहीं कहा, जो सत्य है वह सुंदर, यदि जो सुंदर है वह सत्य होता पर उसमें दोष अनवस्था दोष आ जाता, अनवस्था दोष उसको कहते हैं कोई कहा भरत साहब ये बहुत सुंदर है, अरे बोले इससे ये सुंदर है, इससे ये सुंदर है, तो अनंत सुंदर का भंडार जिसका अंत नहीं होता, इनका सत्य सुंदर है, शक्ति कल्याणकारी मोक्ष का कारण है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम नहीं कहा, जो सत्य होगा वही सुंदर होगा, वही कल्याणकारी होगा, इसलिए भगवान राम ने सत्य का साक्षात्कार किया, भगवान महावीर ने सत्य का साक्षात्कार किया, पर हम अनुयायियों ने जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं किया तब तक हम तिर नहीं सकते हैं, पार नहीं हो सकते हैं, हम अनुभव नहीं कर सकते, सहारे की जरूरत है, जब तक ऊंचे ऊपर नहीं पहुंच सकते तब तक सीढ़ियों का जरूरत है, इसलिए 7 सीढ़ियां जो है, शादास्ती शादनास्ती शादास्ती नास्ती शाद वक्तव्यम शाद अवक्तव्यम इत्यादि जो सप्त भंग है, हमें ये तत्व ज्ञान जब तक ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं, ये समग्र और तत्व ज्ञान के अंश को लेके चले और जाने, तभी आप पूर्ण सत्य को प्राप्त करने के बाद इस संसार में रह नहीं सकते, आप मुक्तात्मा हो जाओगे। इसलिए मैं आज आप लोगों को खास तौर से बात कहूं कि शाद्वाद यहां एक नारियल रखा, एक सेब, उसके बगल में नींबू, आप बताइए ये नींबू छोटा है, सेब उससे बड़ा है, नारियल उससे बड़ा है, सेब कैसे है, छोटा भी है और बड़ा भी है, सब छोटा बड़ा कैसे नींबू की अपेक्षा से बड़ा है, नारियल की अपेक्षा से छोटा। किसी स्त्री के पास तीन बच्चे थे, अपने पर्चे वालों से पर्चे कराते समय कह रहे थे ये बड़ा है लड़का, ये इससे छोटा है, ये इससे, बोले ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है, पिछला लड़का छोटा भी है और बड़ा भी है, ये कैसे छोटा बड़ा, ये बड़े की अपेक्षा से छोटा है और छोटे की अपेक्षा से बड़ा है, ये की पुत्र और बड़ा भी है और छोटा भी है, न वो बड़ा है न छोटा है, जैसे वैसे है, पर बड़े की अपेक्षा से छोटा और छोटे की अपेक्षा से बड़ा। मान भाव उत्पाद ध्वज उत्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का यथार्थ लक्षण जानने के लिए, आत्मा को यथार्थ रूप से जानने के लिए हमें साधवाद का सहारा लेना होगा, और जब तक आप आत्मा को साधवाद के मन की अपेक्षा से जानोगे नहीं, तब तक आप लोग न ध्यान कर सकते, न धर्म ध्यान कर सकते हैं, न परमात्मा का चिंतन कर सकते, सब आपका खोटा होगा अंधेरे में और भटकने जैसा होगा, पगडंडी में भटकने जैसा होगा, जब तक साधवाद का सहारा लेकर आत्मा को नहीं जानोगे। आत्मा को जानने के लिए साधवाद का सहारा बहुत जरूरी है, इसीलिए भगवान महावीर के समोषण में गौतम गोपिन ब्राह्मण पहुंचे और ने पूछा धनते ज्ञान होने के देव उत्ते देश मुक्ता कान्य वाले ऋषि तेरह प्रेक्ष संन्यास के समय अयात्मा ज्ञान में है, हे सर्व कल्याणकारी तीर्थन का महावीर। कुछ लोग कहते आत्मा नष्ट हो जाता, कुछ लोग कहते शाश्वत है, कुछ लोग कहते ज्ञान में है, कुछ लोग कहते परलोक है और नहीं है। मैं इस उलझन में उलझा हूं, मेरे को आप बताइए क्या बात है, क्या आत्मा नष्ट होता है? भगवान महावीर ने कहा नहीं, आत्मा नष्ट नहीं होता, पर नष्ट क्या होता है प्रभु? विचार नष्ट होते, पर्याय नष्ट होते, द्रव्य नष्ट नहीं होते। आत्मा में उठने वाले विकल्प है, विचार है नष्ट होते हैं पर आत्मा नष्ट नहीं होता। आप अपने मन में अच्छे विचार करते, बुरे विचार करते आते और चले जाते हैं पर आत्मा नष्ट नहीं होता। समुद्र के तरंगे उठ रही है और नष्ट हो रही है पर समुद्र का पानी नष्ट नहीं हो रहा। आत्मा के विचार उठ रहे और नष्ट हो रहे पर आत्मा नष्ट अजर अमर है। नष्ट क्या होते? पर्याय। हरा आम पीला हो गया, हरापना नष्ट हो गया, पीलापना प्रकट हो गया पर आम नष्ट नहीं हुआ, वो ध्रुव। मानभाव इसी तरह से ध्रुव शब्द का प्रयोग, अब मैं थोड़ा सा आत्मा पर चल के आपको प्रकाश डालू। देखिए सुमन कुंभ कुंभ देव ने सने सार में बात कही, वंदित्व सब सिद्धि ध्रुवम। ध्रुव शब्द जो है ये अव्यय है, अव्यय है। अव्यय क्यों रखा? कभी व्यय नहीं होना। ध्रुव शब्द का अर्थ आत्मा भी है, और आप लोग नित्य चाहते हैं या ऐसे ध्रुव काम करो शाश्वत काम करो, तो उन्होंने कहा आपका आत्मा ही एक शाश्वत है, बाकी कुछ नहीं। बोले वो कैसे? ये शरीर नष्ट होगा, मकान छोड़ दोगे, महल छोड़ दोगे, कार जहां का नहीं रह जाएगा, पुत्र मित्र सब, ये शरीर भी आपका नहीं है, ध्रुव आपका आत्मा है और शुद्ध आत्मा। जिस शरीर को आप अपना समझ देते हैं ये खत्म हो जाए, पत्नी का कहीं जन्म, पति का कहीं जन्म, और वो कभी मर गई, वे कभी मर गई, उनका जन्म कभी हुआ वो कहीं उनका हुआ, मिल गया और दोनों का संबंध थे एक शाश्वत आत्मा। इसलिए कुल कुल देव कहते ध्रुवम, आपका आत्मा ध्रुव शाश्वत है। मानभाव इस ध्रुव के लिए देखिए आप लोग उत्पाद भव उत्तम सत, उत्पाद वे युक्त होते हुए आत्मा और पदार्थ ध्रुव है, शाश्वत है। ध्रुव सिन्मा तो जीव योग आपको ज्ञाति समय सार में आचार्य अमृतचंद्र ने कहा, जीव जो है आपका चित्त स्वभाव वाला है, ज्ञान स्वभाव वाला है और वह शाश्वत है। ध्रुव शुद्ध जीव योग, निश्चय से शुद्ध जीव ही ध्रुव है, बाकी अध्रुव है। देखिए आप लोग हम रात रंजन अध्रुव के पीछे लगे, अशाश्वत के पीछे लगे हैं, जिसको हम छोड़ चले जाएंगे उसके पीछे रहिए, हम नहीं छोड़ेंगे तो यमराज जबरदस्ती से छुड़ा देगा। बोले आप छोड़ नहीं रहे हैं, आपको छोड़ना होगा। मानभाव आगे चलिए, मैं क्या बताऊं, उपनिषद कठोपनिषद में लिखा अनाज अनंतम महत परम ध्रुवम। बोले आपका आत्मा जो अनाज अनंत और महान और परम श्रेष्ठ जो है वह आत्मा ध्रुव, और कोई ध्रुव नहीं है। जो हड्डी जमड़े ढांचे को सुंदर लाए वह यही छोड़ के जाओगी। जो जंगल में पड़ा होगा साल कुत्ते कीड़े वगैरह खा जाएंगे। जो शरीर को आप अपना रात रंजन कहकर उससे मोह माया ममता कर रहे तो वह अध्रुव है। ध्रुव आपका केवल आत्मा है, वह शुद्ध। ध्रुव का आप प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, ध्रुव को समझो। ध्रुव शब्द का अर्थ आत्मा। उस आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी उस ध्रुव की? तो आचार्य ने कह दिया निरंतर कृताभ्यास आंकर पश्चिमी ध्रुव, निरंतर अभ्यास को अभ्यास करके आप दर्शन कर सकते हैं। पहले आत्मा को समझना होगा। उस ध्रुव को पहचानने से, अनुभव करने से, उसमें देखने से, उसमें रमन करने से क्या उपलब्धि होगी? दृष्टि सत्यारति बिंदे भवि सप्तम। जिस क्षण तुम्हारे ध्रुव शुद्ध आत्मा को देखोगे, ज्यादा से ज्यादा संसार के अंदर सात भव के अंदर तुम आत्मा का परमात्मा बना देगा। कुंभ कुंभ ने ध्रुव शब्द का आत्मा के लिए प्रयोग किया और वो शुद्ध आत्मा के लिए। हम अध्रुव अनुपरीक्षा पढ़ते हैं, यह महल मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, सब मेरा नहीं है, आत्मा केवल मेरा और ये सत्य। मान भाव ये बिल्कुल सत्य। कुछ क्षण के, कुछ दिन के लिए परस्पर में एक दूसरे का संबंध है, मृत्यु होने के बाद किसी का कोई संबंध नहीं। मैं क्या बताऊं आपको, पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी इस टहनी का मुंह नहीं करता, थोड़ी देर बैठ गया और उड़ गया। पर आप कितना अपने मकानों पर, महलों पर, अपने वस्तुओं पर मुंह करते हो। जो पक्षी अच्छा है, सराय को छोड़ते हुए यात्री को दुख नहीं होता। मैं इस धर्मशाला को नहीं छोड़ रहा हूं, उस नाव को छोड़ रहा हूं, उसको दुख नहीं होता। पर हमें रात रंजन शाश्वत नहीं है, उसके पीछे हम शाश्वत समझ के चिपके लिए हैं। इसीलिए हमारे तीर्थंकर समोसरण में चार अंगुल प्रत्यक्ष ऊपर बैठते। तो हमें भी, आप कभी घर में बैठो तो दीवार से चार अंगुल छोड़ के बैठो, बोले ये मकान मेरा नहीं, महल मेरा नहीं। और तभी आप लोग अपने आत्मा का ध्यान कर सकते, आत्मा को समझ सकते। आप वस्तु से नहीं चिपके। आप कहते हैं जेब में से नोट निकाल के, ये मेरा नोट है। नोट बोलने जानता तो हंसी मजाक उड़ा देता आपका। बोले क्यों? अरे करोड़ों अरबों आपको घूम के आया, सबने मेरा कहा, पर मैंने नोट में किसी को तुम्हारा नहीं कहा। सबने कहा मुझे मेरा है, पर मैंने किसी को नहीं कहा मैं तुम्हारा हूं। जो अपने को हम तो कह रहे ये नोट मेरा है, पर उसने हमें कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा हूं। आपको भूल जाए पर किसी को उसने कहा नहीं। तो माया छाया ये कहे, घटे बड़े सिनेमा इनके संगति दे लगी तिन्ने कछ सुखना। छाया करके बैठ गए, धूप आ जाएगी, धूप भर करके बैठे छाया आ जाएगी। इसलिए चंचल और अशाश्वत वस्तु के पीछे न लगते भी हम ध्रुव शाश्वत सत्य आत्मा को जाने, पछाने, मनन करें, चिंतन करें, अनेक दृष्टियों से, अनेक अपेक्षा से, पॉइंट ऑफ व्यू से, हर दृष्टि से आत्मा को हम पहचाने, देखे, समझे और उसके अनुभूति के लिए बाद में हम प्रयत्न करें तो हमारे कुछ हाथ लग जाएगा।
नमो नमो अरहंतानम, नमो नमो सिद्धानम, नमो नमो
दर्शन और तत्वज्ञान का प्रतिपादन जो किया जाता है, जो हम वाणी बोलते हैं नित्य प्रति, तो हमें शास्त्रवाद के सहारे से ही हम किसी तत्वज्ञान का प्रतिपादन कर सकते हैं समझा सकते समझ सकते हो। साध्वाद एक ऐसा सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति को तत्वज्ञान में प्रवेश करने के लिए, उसके यथार्थ निर्णय लेने के लिए उसका अध्ययन मनन चिंतन बहुत आवश्यक है। वाद शब्द का अर्थ है सिद्धांत। साध्वाद क्या चीज है? आपके मुख से निकलने वाला जो एक शब्द है वह एक मैं है। हम जो बोलते हैं एक मैं के द्वारा बोलते हैं, एक प्रमाण वाक्य एक मैं वाक्य। तत्वा सूत्र में सूत्र है प्रमाण मैं अधिग्रह। इस एक सूत्र पर अपने आकलन का भी आचार्य ने 32 ग्रंथ लिखे हैं, सिद्धि निश्चय न्याय निश्चय इत्यादि। ये इतने बड़े गूढ़ है और सूक्ष्म विषय है, आमतौर से इसको लोग समझ नहीं पाते। इसलिए आग्रह रहा कि साध्वाद क्या चीज है। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक ताजा कपड़ा 50-100 गज का लिया है कपड़ा और दर्जी को दिया, उसने कैंची से काट दिया, टोपी बना दी, शर्ट बना दिया, पायजामा बना दिया, रुमाल बना दिया। आप मुझे बताइए एक थान कपड़े में से आप काम शर्ट जो बना दिया तो आप एक को तो टोपी कह रहे हैं, एक को तो आप शर्ट कह रहे हैं, एक को कमीज कह रहे हैं। अब तक उसको कपड़ा कहते थे, थान कहते थे, उसका नाम कैसे बदल गया? रुई का है, कपड़े का है, सब में कपड़ा है, कैसे आपने उसको टोपी कहा, शर्ट कहा, या उसी में काट दिया तो साड़ी कह दिया? नाम कैसे बदल रहे आप? अब तक आप कहते थे कि साहब दूध है, गर्म करके और ऊपर तैरते कह रहे कि मलई है, थोड़ा सा खट्टा डाल के आप दही कह रहे हैं, बिलौना हिलाते आप मक्खन और छाछ कह रहे हैं, और बर्तन में रख के गर्म करके उसको घी कह रहे हैं। नाम कैसे बदल रहे आपने? क्यों बदल रहे हो? क्या कभी सोचा है आपने? एक दूध को गाय के घास खिलाया हरे रंग का, उसने दूध सफेद दे दिया, और आप जैसे जैसे उसके प्रकार बढ़ते गए उसके नाम बदलते जा रहे। पर याद रखना उस नाम के साथ जो मूल सिद्धांत है वो कभी नहीं बदल सकता है। बोले ये जो दही है बोले गाय के दूध की दही, ये दूध मलई है गाय के दूध की मलई, घी है बोले गाय की घी है, मक्खन है बोले गाय के दूध की मक्खन। उसके साथ मूल जो होता है वो कभी बदलता नहीं। जो लिया पीस दिया उससे आपने रोटी बना दी, कचौड़ी बना दी, पुड़िया बना दी, नाम बदल गए पर झोंका जो मूल स्वभाव है नहीं बदला। आपने ब्रेड बना दिया, डबल रोटी बना दी, झो नहीं बदला। नाम क्यों उसे बदल दिया आपने? क्यों बदल दिया बताइए आप? क्या आपको अधिकार है नाम बदलने का? क्यों नहीं कहते कि साहब ये झो है झो है झो है? पीस से ही आटा कहते हो और मलते उसको कनक कहते हो, और उसके बाद जैसे आकार देते उसका नाम अलग कैसे रखते हो? वेद में जो पूरी आप बोलते हो उसको टूप कहते हैं, और अरब भाषा में भी टूप कहते हैं, और वेदों में पुरोड़ा कहते हैं। टूप पुरोड़ा और पूरी बन गई उसकी। तो जैसे हम आकार देते हैं उसके नाम बदल लेते हैं, तो नामकरण करते हैं, ये नाम के अनुसार बहुत से बातों में गुण होते हैं और गुण भी नहीं होते हैं। फिर भी व्यवहार चलाने के लिए बहुत से नाम रखे गए हैं, रखे जाते हैं। किसी श्री का नाम रख दिया सोना भाई, तो हाथ पैर काट के आप गहने बना दीजिए, अलंकार बना दीजिए। तो नाम के अनुसार गुण हो ये कोई नियम नहीं है। व्यवहार के अंदर, व्यवहार में पर सिद्धांत के अनुसार जब मूल में आते हैं नाम के अनुसार गुण होना बहुत आवश्यक है। इस शाद्वाद सिद्धांत के ऊपर अनेकों ने आलोचना की है, शंकाएं पैदा की है और इसी प्रकार से उसके ऊपर प्रकाश भी डाला है, नाना तरह की बातें हैं। देखिए आप आज शंकराचार्य बागरा सूत्र पर व्याख्या करते रहे, मैं एक सुन संभवा इस सूत्र पर वो क्या कहते हैं। आदि शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र में जैन आचार्य का तीर्थंकरों का जो शाद्वाद है उस पर शंका उपस्थित करते हैं। मैं चेषा पदार्था नाम अवक्तव्यम संभव थी अवक्तव्य चेरे चोरे उच्चंती चावक्तव्य स्थिति प्रतिशत जैन आचार्य से पूछते हैं पदार्थ कभी अवक्तव्य नहीं हो सकता, यदि वो अवक्तव्य है तो कथन नहीं किया जा सकता, कथन भी किया जा अवक्तव्य कहा जा ये मुझे शाद्वाद परस्पर विरोध लग रहा है। ऐसे शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्म सूत्र में शंका उठा, परंतु वही शंकराचार्य अपने विवेक चुड़ामणि में एक शान पर कथन करते समय कहते हैं मेरे तत्व कैसे है, परिमान है और कैसे अद्भुत है और कैसे है बताइए, तो उनका अनिर्वचनीय रूपा अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता। तो हमने भी तो ये बात कही है कि पदार्थ का जो सर्वथा वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके आंशिक सत्य को जाना जा सकता, आंशिक सत्य को और कथन दिया जा सकता। महानुभाव चलिए आप देखिए शाद्वाद के बारे में भगवान राम के ऊपर मैं बताता हूं। राम लक्ष्मण के लिए भाई थे, सीता के लिए पति थे, जनक के लिए दामाद थे, दशरथ के लिए पुत्र थे और लव अंकुश के लिए पिता थे। राम पिता भी थे और पुत्र भी थे, पर लव अंकुश के लिए पुत्र नहीं पिता थे, दशरथ के लिए पिता नहीं पुत्र थे। तो एक ही व्यक्ति राम पिता भी और पुत्र भी कैसे बताया। तो सापेक्षता को लेके जब तक नहीं चलोगे तब तक कोई तत्व ज्ञान का आप निर्णय कर नहीं पाओगे। किसी को समझाना और समझना है तो शाद्वाद का सहारा सबको लेना होगा। शाद्वाद हमें एकांत से बचाता है, टकराव से बचाता है, ऑक्सीजन खोने से बचाता है। शाद्वाद एक ऐसा चौराहे पर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस है, दो कारों को टकराने से बचाता है, एक को रोक देता है एक को जाओ शाद आपके और शाद ना, शाद आपके और शाद ना, एक के लिए कहता जाओ एक के कहता रुक जाओ। ऐसे ऐसे शाद्वाद सिद्धांत को हमारे आचार्यों ने विधिवत उसका प्रतिपादन शास्त्रों में किया, उसके भंग साथी रखे हैं। जैसे हम अनंत दिनों की गिनती के लिए इतवार सोमवार मंगलवार सात दिन की गिनती करते हैं, गाना गाना है तो सारे गाना पदल साथी दिन का गाते हैं, साथी स्वरों में गाते हैं, कोई भी गाना गाओ पर सात स्वरों में गाया जाएगा। कितने भी दिनों की गिनती करो सात दिनों से कर लो, और आपकी शादी भी होती तो सप्त पदवी साथी भी होते, ऋषि भी सप्त है तो शाद्वाद भी सात संख्या, ये बुद्ध धर्म धर्म आकाश काल गए सप्त तत्व साथी, नरक साथ है, भय भी साथ है, ये लोग गया परलोक गया आकस में गया अनुरक्षा गया निगरा गया मरण गया अगुप्त गया, ये सात संख्या फुल देव से साथी क्यों रखा गया। सप्त गए तक संदेश उत्पादा, मनुष्य को जब कभी भी कहीं संसार में शंका उत्पन्न हो गए होती है वह सात तरीके होती है, आठवें तरीके कोई दुनिया में शंका नहीं होती, और इसका उत्तर भी सात तरीके से दिया जा सकता है। आपने सूरज को देखा चंद्रमा को देखा कह दिया ये सूरज है, ये प्रमाण वाक्य, पर आपने जब उसका कथन करना शुरू कर दिया वो प्रमाण वाक्य से नई वाक्य शुरू होगा। ये सूरज गोल है, उसका एक उसका आपने कथन किया, सूरज लाल है, दूसरा उसका कथन कर दिया। सूरज की रोशनी प्रताप प्रखर है, उसका तीसरा गुण का वर्णन कर दिया। इस प्रकार से जिस पदार्थ में अनंत गुण मौजूद हो उसको एक शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसको व्यक्त करने के लिए शाद्वाद का सहारा लेना आवश्यक। किसी भी चीज का वर्णन करते हैं और दुनिया में याद रखिए एक बात, कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं है, पर शाद्वाद के द्वारा आप देखिए। एक आदमी एक दुकान में गया, उन्होंने कहा साहब मुझे अमुक जाति का कपड़ा चाहिए, दिखाया उसने, देखा बोले कपड़ा ठीक नहीं है, हटा दीजिए, बोला हाँ ये ठीक है, ले गया। दूसरा व्यक्ति जब आया उसने जिसको ठीक कहा था उसको रखा, बोले ये ठीक नहीं है, दूसरे ये ठीक कहा था उस कपड़े को कहा ठीक है। आप ये बताइए मुझे वो कपड़ा ठीक है या बेठीक है, अपनी रुचि है, अपनी अपेक्षा है, अपने भाव है। पिछले एक के लिए वो अच्छा है तो दूसरे के लिए नहीं। एक कन्या देखने कोई गए और उन्होंने कहा साहब अब तक हमने देखे उनमें से कन्या बेकार है किसी काम के लिए, और दूसरे ने आके कहा साहब हमने हजारों कन्या देखे पर ये कन्या हमारे घर के लायक है, तो ये बताइए वो कन्या अच्छी है बुरी है। मान भाव शाद्वाद जो है एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है, एक जिसको अच्छा कह रहा है दूसरा बुरा कह रहा है, दूसरा जिसको अच्छा कह रहा है उसका बुरा कह रहा है, पर वह वस्तु न बुरा है न अच्छा है, जैसे हो वैसे पदार्थ जैसे वैसे है, पर कथन करने वालों की अपनी जो दृष्टि होती है पॉइंट ऑफ व्यू, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से वह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और उसको निर्णय लेता है। शाद्वाद प्रत्येक व्यक्ति को और अधिकार देता है, इनको बोलने का अधिकार है तो आपको भी बोलने का अधिकार है, और शाद्वाद किसी के अधिकार को छीनता नहीं, वह समता भाव उत्पन्न करने के लिए सहारा लेने के लिए शाद्वाद आपको सलाह देता है। शाद्वाद कुछ नहीं सलाहकार है, कलाकार है सत्य का। महात्मा गांधी जी जब गए शांति निकेतन, वहां के छात्रों ने उनको अपने कला भवन में ले गए, सारे विकार घंटोवर गांधी जी देखते देखते चले आए। छात्रों ने पूछा हमारे कला कैसे लगी, बोले मेरी कला और ही है, बोले आपकी कला क्या है, बोले सत्य मेरी कला है, जिसमें सत्य है वो मेरी कला है, जिसमें सत्य है वो शाद्वाद स्वीकार करता है, जिसमें सत्य नहीं है उसको शाद्वाद स्वीकार नहीं करता। आप बताइए चार पांच आदमी भोजन के लिए बैठे, एक ने उनको दाल रोटी परोस दिया, भोजन शुरू हो गया, एक ने कहा साहब दाल बड़ा अच्छा है नमक ठीक है, एक ने कहा साहब नमक कम है, एक ने कहा अरे इतना नमक ज्यादा डाला है मेरे से खाया नहीं जा रहा है, आप कैसे जजमेंट देंगे बताइए, जजमेंट कैसे जाओगे आप। एक कह रहा है साहब इतना नमक डाला गया खाया नहीं जा रहा है, एक कहता फीका हो गया और नमक डाल दो, एक कहता बिल्कुल ठीक है। नोट कर लीजिए आप कैसे जजमेंट दोगे, घर में आप अपने रसोई या सिया पत्नी से पूछिए, उससे सलाह पूछिए कैसे जजमेंट दोगे आप। और फिर चलिए आपने किसी ने कह दिया साहब दाल आज बहुत अच्छा बना हुआ है, दाल सब ले लिया, सब तकरार करेंगे, जल बोलेगा हमारा भी तो नाम ले लो, हम नहीं होते दाल कैसे बनता, दाल अच्छा लग रहा है तो नमक कहेगा साहब मैं नहीं होता तो इसमें स्वाद कहां से, रसोई में तो एक रस सेंधा नमक को मान होगा, खटाई बोलेगी साहब हम नहीं होते तो दाल के मजा नहीं आता, हमें क्यों बोले हो केवल दाल का इसमें श्रेय नहीं है, मेरा भी है मेरा भी नाम ले लिया, उस खाने वाले के साथ तो सब लड़ पड़ेंगे, बोले मीठा दूध मैं नहीं होता तो दाल अच्छा नहीं लगता, नीरज बोलेगा मैं नहीं होता, अरे तुम सब हो पर छोक वाला मैं नहीं होता तो कैसे होता, और अग्नि कहेगी साहब गर्म है मैं तो इसको सबको पकाने वाला हूं जलाने वाला हूं मुझे कैसे भूल गए, घी कहेगी मेरा भी हिस्सा है, मान भाव साधवाद एक ऐसा है कि वह समन्वय के साथ किसी को टकराए बिना सबके रास्ते को प्रशस्त करता, सबको उसके अपने अपने श्रेय को बांध देता है। एकाधिकार, एक छत्र या हुकुमशाही चलने नहीं देता, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है ये कहने नहीं देता है। साधवाद गणतंत्र को पसंद करता है, जनतंत्र को पसंद करता है, प्रजातंत्र को पसंद करता है, एक तंत्र को बिल्कुल पसंद नहीं, एक तंत्र को लेकर चलना मुख्यात है, अनेकांत और अनेक तंत्र को अनेकांत को लेकर चलना ये सम्यक। अकलंक देव ने भारतीय ज्ञान पीठ से दो भागों में छपी सिद्धि निश्चय बहुत सुंदर कहा है। किसी ने कहा इस पेड़ पर बंदर रहता है, अकलंक देव कहते प्रकृत नए है, आपका कहना ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले सारे पेड़ पर बंदर नहीं बैठा, किसी एक टहनी पर बैठा है। कैसे कहा आपने कि इस पेड़ पर बंदर बैठा हो? इस गांव में मुर्गा बोल रहा। अकलंक देव आपत्ति उठाते हैं, सारे गांव में नहीं किसी मोहल्ले के किसी घर के कक्ष में बोल रहा है। साधवाद एक ऐसा सिद्धांत है वह अमृतत्व को प्राप्त कराता है। साधवाद एकांत को नहीं, साधवाद दो लोगों को श्रेय देता है। मूल में बोलते हैं जैसे स्त्री गुलौना डाल के दही में मथानी मथती है, दो रस्सी को पकड़ती है, यदि वो दोनों को खींचेगी तो सारे शरीर पर पड़ जाए, दोनों को छोड़ देगी मक्खन नहीं निकलेगा, दोनों को खींचेगी तब भी नहीं, एक को ढीला छोड़ना होगा एक को खींचना होगा, शादास्ती और शादनास्ती मक्खन तैरने लगेगा, व्यवहार में और निश्चय में को लेकर चलोगे तो अमृतत्व की प्राप्ति होगी। एक को ढीला छोड़ना, एक को खींचना, एक को खींचना और एक को ढीला छोड़ना, तो व्यवहार में और निश्चय में इन दोनों को एक साथ समन्वय करते हुए ले चलने को सलाह देता है। कोई ये कहे व्यवहार में झूठा है, कोई ये कहे कि निश्चय में सत्य है, या निश्चय में झूठा है व्यवहार में सत्य है, तो साधवाद इन दोनों को पसंद नहीं करता। साधवाद कहता है व्यवहार और निश्चय ये दोनों एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के उपकारक है। व्यवहार में भगवान महावीर एक बार दिमजिल पर बैठे थे, तीसरे मंजिल पर किसी रात की नीचे से किसी ने पूछा उनके सखा ने मुझे महावीर से मिलना है, उनके साथ चार पांच मित्र और भी थे, तो सिद्धार्थ ने कहा कि ऊपर है, वो सारे के सारे त्रिशला के पास पहुंच गए ऊपर, उन्होंने कहा महावीर कहा? बोले नीचे है, अभी तो हम नीचे से आए, बोले यार दूसरे मंजिल पर वहां पहुंच गए बैठ गए। उन्होंने कहा हे भंते प्रभु महावीर, सिद्धार्थ ने कहा कि आप ऊपर हैं, त्रिशला कहा आप नीचे हैं, क्या सकते हैं? और अपने मित्रों को बिठाया, उन्होंने कहा ये बताओ मैं नीचे की दृष्टि से ऊपर हूं और ऊपर के दृष्टि से मैं नीचे हूं, तुम्हारे दृष्टि से मैं पश्चिम में हूं, तुम्हारी दृष्टि से मैं पूर्व में, आपकी दृष्टि से मैं उत्तर में हूं और आपकी दृष्टि से मैं दक्षिण हूं, पर मैं जहां हूं वहीं हूं, मैं न नीचे हूं न ऊपर हूं, पर आपके लोगों की दृष्टि की अपेक्षा से मैं इन सब बातों से हूं। मान भाव साधवाद एक घर में पांच सात लोग रहते हैं, बच्चे हैं, कोई कहते हैं हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, कोई कहते हैं डॉक्टर, कोई काले कपड़े पसंद, कोई सफेद, कोई चरपरा, कोई मीठा पसंद करते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, तुम्हें मीठा खाना होगा, तुम्हें चरपरा खाना होगा, तुम्हें दूध पीना होगा, तुम्हें अमुक करना। साधवाद उसकी रुचि को छोड़ देता है, पर यह जरूर कहता है वह आपके शरीर के लिए बाधक नहीं है, सोच समझ के सेवन करो। वो ये कहता है खाना खाओ, पर से इतना खाओ जो हजम कर सकते हो, इससे अधिक खाओगे तो खाना तुम्हें खा जाएगा। शाद्वाज एक एक पॉइंट को लेकर चलता है, वह बहुत भोरा भी है, सुलभ भी है, ये पेंसिल है भी और नहीं भी है, एक साथ शाद्वाज कहेगा। मेरे साथ कैसे कहेगा, है और नहीं है, मेरे चौकी पर नहीं है, हाथ में है, हाथ में नहीं है और चौकी पर, एक ही पदार्थ को एक साथ है और नहीं है कह देगा। शाद्वाज जिस समय जो स्थिति हो उस समय का वर्णन कथन करता है, भूत भविष्य वर्तमान का भी कथन करता है। कोयला लिया आपने, कोयला वर्तमान में कोयले का रंग आप काला कह रहे, उसका भूत बोले लकड़ी बजाने रंग का था, भविष्य क्या होगा बोले सफेद राख होगा। तीन पर्याय, एक एक पदार्थ अस्तु त्रिवा भवति वीक्षिता, एक पदार्थ को तीन तरह से देखा जा रहा, भविष्य में सफेद देखा जा रहा और भूत पर्याय से बजाम का रंग देखा जा रहा और वर्तमान में उसको काला कह रहा। बदामी रंग का वो काला कोयला निकला कर रंग किसने, परमात्मा ने डाला, पेंटर ने रंग दिया, वो रंग काला आया कहां से, अनंत धर्म तत्व पश्यंती प्रत्यगात्म, एक एक पदार्थ अनंत धर्मात्मक है, व्यवहार सर्वथा सत्य नहीं आंशिक सत्य, पूर्ण सत्य नहीं। कैसे, आप सब किसी भी चीज को लेते हैं, एक रुपए का नोट लेते हैं, कहते हैं एक रुपए का नोट है, मिथ्या है, एकांत काशी, उसको एक कह देना मिथ्या है, किंतु उसमें सौ नया पैसा है, तो सौ सत्य है एक सत्य, एक रुपए नोट में सौ नए पैसे हैं, पर याद रखिए एक संख्या निश्चय नहीं से क्या है? आप लोग हर चीज को कहते हैं एक डंडा है, एक लकड़ी, एक पेंसिल, एक कागज है, सबको एक कहते चले जाते हो, एक संख्या अखेर निश्चय नहीं से क्या, व्यवहार में से चाहे जिस पदार्थ को एक संख्या कह सकते हो, पर निश्चय नहीं से किसी भी चीज को एक संख्या नहीं कह सकते, जो अल्टीमेट अटल होगा, परमाणु होगा, वह निश्चय से सत्य और एक संख्या वाला, एक संख्या वाला, क्योंकि उसमें दूसरा टुकड़ा नहीं होता परमाणु में, अल्टीमेट अटल दोबारा टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा जो अविभाज्य टुकड़ा है वह सत्य है और एक है संख्या में, बाकी सब संख्या में एक नहीं है, सापेक्ष एक है, सापेक्ष एक है, ये किसको कहोगे आप निर्णय करिए, विचार करिए, एक संख्या किसको कहोगे, एक रुपए के नोट को एक कह रहे और आप कहते भैया इसमें से पचास नया पैसा का देगा और पचास नया वापस लौटा दो, और वह सौ कहां से आए इसमें, तो व्यवहारिक रूप में शाद्वाज ने हमें एक ऐसी दृष्टि दी कि क्या कहें, हमारे दो हाथ हैं, इन दोनों में झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, इस हाथ ने कहा मैं तो दान देता हूं, भोजन करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, मैं पवित्र हूं और तुम तो अपवित्र हो, तुम सब सफाई का काम करते, नाक सफाई हो सफाई, तुम तो भंगी हो, इस हाथ ने अभिमान से कहा, द्रभिमान से कहा कि मैं जो है उच्च हो, ब्राह्मण हो, कुलीन हो, श्रेष्ठ हो, मैं दान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, भगवान की पूजा करता हूं, लिखता हूं, सब मेरे लिए श्रेष्ठ है, मैं पूज्य हूं, और तू तो हीर है, सफाई करता रहता है तो भंगी है, ये नाराज हो गया, उसने कहा आज से मैं हड़ताल करता हूं, काम नहीं करूंगा, तो भंगी का काम इसको करना पड़ा, इसलिए उसने एक माफी मांगी कि तुम तुम्हारा काम करो, मैं अपना काम करता हूं। महानुभाव शाद्वाज की बात क्या कहो, आप सब यहां बैठे हुए शूद्र हैं, आप सब ब्राह्मण हैं, आप सब वैश्य, आप सब क्षत्रिय, नाम स्थापना गर्भास संन्यास, क्या बात आचार्य ने कह दी, जब आप दूसरे से लड़ रहे हैं आत्मरक्षा के लिए आप क्षत्रिय हैं, आप लेन देन का व्यापार कर रहे हैं आप वैश्य, जब भगवान के सामने बैठ के पूजा कर रहे आप ब्राह्मण है, जब झाड़ू मार रहे तो आप शूद्र, आप ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, शूद्र भी है, आप वैश्य भी। हम क्या कहे आपको, इस शादवाद को हमें समझने के लिए कुछ समय देना होगा, कुछ परिश्रम करना पड़े। आइंस्टीन ने जब इस शादवाद को प्रथम बार देखा, चिंतन करने लगा, कुछ समझ नहीं पाए। पत्नी से कहा मुझे एक महीने का मौन लेना है। मौन मतलब बिल्कुल बोलूंगा नहीं, क्या होगा फिर मेरा, फिर कुछ भी होने दो, पर एक महीने का मौन लूंगा।